ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਗੌਰੰਗ ਬਲੀ ਤੇ ਹਵੇ ਉਲਕ ਸ਼ਰੀਰ, ਗੌਰੰਗ ਬਲੀ ਗੌਰੰਗ ਬਲੀ ਤੇ ਹਵੇ ਉਲਕ ਸ਼ਰੀਰ, ਗੌਰੰਗ ਬਲੀ ਉਲਕ ਸ਼ਰੀਰ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਬਲੀ ਤੇ ਬਹਿਨੀਰ, ਹਰੀ ਹਰੀ ਨੈਨੇ ਬਾਬਨੀਰ, ਗੌਰੰਗ ਬਲੀ ਤੇ ਹਵੇ ਉਲਕ ਸ਼ਰੀਰ, ਗੌਰੰਗ ਹਰ ਤੋਬੇ ਨਿਤਾਈ ਤਾਂਬੇ ਕਰੁਣਾ ਹੋਈਬੇ, ਹਰ ਤੋਬੇ ਨਿਤਾਈ ਤਾਂਬੇ ਕਰੁਣਾ ਹੋਈ, ਹਰ ਕੋਬੇ ਨਿਤਾਈ ਤਾਂਬੇ ਕਰੁਣਾ ਹੋਈ, ਸੰਸਾਰ ਵਸਨਾ ਮੋਰ ਕੋਕੇ ਤੂਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਸਨਾ ਮੋਰ ਕੋਕੇ ਤੂਤ, ਸੰਸਾਰ ਵਸਨਾ ਮੋਰ ਕੋਕੇ ਤੂਤ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਗੌਰੰਗ ਬਲੀ ਤੇ ਹਵੇ ਉਲਕ ਸ਼ਰੀਰ, ਗੌਰੰਗ ਬਲੀ ਉਲਕ ਵਿਸ਼ਯ ਤਾਂ ਕਬੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਮਨ, ਵਿਸ਼ਯ ਕਬੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਮਨ, ਵਿਸ਼ਯ ਚਾਰਿਆ ਕਬੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਮਨ, ਕਬੇ ਹਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ, ਕਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ, ਗੌਰੰਗ ਬਲੀ ਤੇ ਹਵੇ ਉਲਕ ਸ਼ਰੀਰ, ਗੌਰੰਗ ਬਲੀ नाथ पदे होइबे अतुते अबे हमें बुझावो से युगल पीछे अबे हम बुझावो से युगल पीछे गौरांग पली से गावे उलत चरे पदे रहु मोर आश पदे रहु मोर रूपर गुनाथ पदे रहु मोर आश प्रार्थना करो ये सदा भरतम दास गौरांग पति से उलट चले राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। दष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नयष्टकी। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका तत्कांचन गौरांगी राधे वांछाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज एकादशी के उपलक्ष्य में हम श्रीमद्भागवतम की बजाय श्री प्रभुपाद के ऊपर लीलामृत पाठ करेंगे। तो शीर्षक है नई जगन्नाथपुरी प्रकरण 24 मुकुंद अपना अभिप्राय बताते हुए कहते हैं, एक दिन उत्सुकतावश में स्वामी जी की भोजन कक्षा देखने गया। मैं अंदर गया और स्वामी जी की रसोई घर में रसोई घर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। महिलाएं भोजन बना सीख रही थी और स्वामी जी ने मुझसे कहा, तुम क्या कर रहे हो? ओह, मैंने कहा, मैं अपनी पत्नी को देखने आया था। तब स्वामी जी ने कहा, तुम परमात्मा की ओर लौट रहे हो कि पत्नी की ओर? हर एक हंसने लगा जैसे आप हंसे। और मुझे अनुभव हुआ कि मेरा वहां जाना किसी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वहां से चला आया। इस घटना से मुझे स्वामी जी की गंभीरता के बारे में विचार आया। मैंने एक तो यह सीखा कि मुझे अपनी पत्नी में इतना आसक्त नहीं होना चाहिए था, और दूसरी बात यह कि स्त्रियों के साथ उनका संबंध और जो कुछ वे उन्हें सिखा रहे हैं, यह सब सचमुच बहुत गंभीर मामला है। यह पति पत्नी के बीच पटखेलियों भरे संबंध की तरह नहीं, वे रसोई घर में स्त्रियों को कई घंटे भोजन बनाना सिखाते थे, इसलिए वे बहुत उत्साहित थी। लीलावती को गर्व सा होने लगा। भक्तों में बहुत से कॉलेज के स्नातक नहीं थे और प्राचीन साहित्य का छात्र तो कोई नहीं था। लीलावती कभी कभी स्वामी जी के लिए टाइप का काम करती थी, उनके आदेश का पालन करती थी या प्रातः काल उनके कमरे में फूल लाती थी, और उन्होंने तत्काल उसे विशेष रूप से अपना एकमात्र रसोईया चुन लिया था। केवल कुछ दिनों की पाक शिक्षा के बाद स्वामी जी ने कहा था, बहुत अच्छा, तुम भोजन बनाओ। और उसका निरीक्षण करने के लिए वे अब केवल कभी कभी जाते थे। एक दिन जब उन्होंने उसे रोटी बेलते हुए देखा तो वे बोले, ओह, तुमने बहुत अच्छा सीख लिया। स्वामी जी का भोजन ठीक से बनाना, सही मसाला डालना, किसी चीज को जलाना नहीं और बिल्कुल समय पर तैयार कर देना, यह सब कुछ सचमुच एक चुनौती था। भोजन तैयार करने तक लीलावती को पसीना आ जाता और तनाव के कारण वह रोने भी लगती, किंतु जब वह स्वामी जी का भोजन लाती तो वे उससे एक खाली प्लेट लाने को कहते और वे अपनी प्लेट से उसका हिस्सा निकालते और उसे अपने साथ खाने को आमंत्रित करते। पहले कुछ दिनों तक लीलावती ने प्रसाद के अद्भुत स्वाद के विषय में टिप्पणी की और स्वामी जी या तो मुस्कुरा देते या दृष्टि ऊपर कर देते, किंतु उसने देखा कि स्वामी जी खाते समय बोलते नहीं, वरन भोजन पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। वे पालथी मारकर बैठते थे, उनका शरीर प्रसाद की प्लेट के ऊपर झुका होता था और वे दाएं हाथ से खाते थे। एक बार एकादशी के दिन लीलावती स्वामी जी के कमरे में देर से पहुंची। उसने सोचा कि उपवास के दिन कुछ अधिक पकाने को नहीं होगा, लेकिन जब वह रसोई घर में घुसी तो उसने देखा कि स्वामी जी स्वयं बड़ी व्यस्तता के साथ भोजन बना रहे थे। वे किसी सफेद चीज को गर्म कर रहे थे और उसे जोर से हिलाते हुए कढ़ाई के कंधे से खुरच रहे थे। ओह, मैं आश्चर्य में था कि वह लड़की कहाँ है। लीलावती इतना शर्मा गई कि उसने यह नहीं पूछा कि स्वामी जी क्या कर रहे हैं। उसने अपने आप को सब्जी खाते में लगा दिया।
आज व्रत का दिन है, उसने कहा माँ तो स्वामी जी को रसोई बनाने के लिए डांट रही हो, मानो स्वामी जी को रसोई बनाने के लिए डांट रही हो, तुम्हें समझना होगा। उन्होंने उत्तर दिया कि कृष्ण भावनामृत में व्रत का दिवस भोज का दिवस होता है, हम इसे कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं। लीलावती स्वामी जी की सफेद चिपकाऊ चीज से दूर बैठी रही जब तक कि वह तैयार नहीं हो गई और स्वामी जी ने उसे ठंडा होने के लिए खिड़की पर नहीं रख दिया। बाद में यह सख्त हो जाएगी, उन्होंने कहा, और तब हम उसे काट सकते हैं और परोस सकते हैं। और यह कहने के साथ वे मुड़े और रसोई घर से बाहर चले गए। जब लीलावती ने भोजन पकाना खत्म किया और स्वामी जी को एकादशी का भोजन परोसा, तब उन्होंने उससे खिड़की पर रखी वह चीज लाने को कहा। उससे चखकर वे प्रसन्न हुए और लीलावती से कहा कि मुकुंद और जानकी को उसे चखने के लिए बुला लाओ। जानकी ने एक और लिया और कहा, अद्भुत है, सचमुच अद्भुत। अब अविस्मरणीय यह है क्या? लीलावती को और मुड़ते हुए स्वामी जी ने पूछा, इसमें क्या है? मैं नहीं जानती स्वामी जी, उसने कहा। तुम नहीं जानती? वे बोले, तुम रसोई घर में मेरी बगल में खड़ी थी और तुम्हें याद नहीं है? लीलावती का चेहरा लाल हो गया। ओ स्वामी जी, लीलावती ने उत्तर दिया, मैं बहुत व्यस्त थी, मैंने देखा नहीं। और तुम व्यस्त रहती हो बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए। वे बोले और देर तक हंसते रहे जब तक कि मुकुंद ने भी हंसना बंद नहीं किया। लीलावती और भी लज्जित अनुभव करने लगी। स्वामी जी ने जानकी से पूछा कि क्या वह बता सकती थी कि इस व्यंजन में क्या पड़ा था? वह कुछ नहीं बता सकी सिवाय उसके कि वह मीठा था। उसको इतना ही मालूम था कि वो मीठा है, बाकी क्या है वो मालूम नहीं था। तब उन्होंने गोविंद दासी और गौर सुंदर को बुलाने के लिए लीलावती को नीचे भेजा। जब वे कमरे में घुसे तो स्वामी जी ने लीलावती से कहा, जाओ और उस अद्भुत चीज में से थोड़ा और लाओ। पुनः इस बात उन चार भक्तों की उपस्थिति में स्वामी जी ने लीलावती से पूछा, अच्छा इस व्यंजन में क्या है? और फिर उसने अपने बचाव में वही बात कही। वह इतनी व्यस्त थी कि उसने देखा नहीं और स्वामी जी फिर हंसे जब तक कि हर एक उनके साथ हंसने नहीं लगा। तब उन्होंने गोविंद दासी से इस अद्भुत पदार्थ को रखने और यह बताने को कहा कि उसमें क्या पड़ा है। तुरंत उसने अनुमान लगाया कि शक्कर, घी और दूध का पाउडर। ओह, स्वामी जी ने लीलावती को देखकर कहा, वह कलाकार है, बुद्धिमती है। लीलावती के लिए पूरी घटना विकट परीक्षा थी। केवल बाद में उसे समझ आई कि स्वामी जी उसे विनयशीलता सिखा रहे थे। 7 बजे सवेरे का समय था। प्रभुपाद मंदिर में अपने मंच पर बैठे थे। उनकी बगल में एक मंच पर हाल में प्राप्त कृष्ण की प्रतिमा थी। प्रतिमा 2 फुट ऊंची थी। बालक कृष्ण का बायां हाथ उनके नितंब पर था और दाएं हाथ में वे एक डंडा लिए थे। गुरुदास ने उसे एक आयात भंडार में पाया था और मैनेजर से उसे बेचने की प्रार्थना की थी और कई बार जाने के बाद मैनेजर राजी हो गया था। $35 में प्रभुपाद ने उसका नाम कर्ता मिशाई स्वामी जी रखा था। आज प्रांत काल जब प्रभुपाद और कर्ता मिशाई ने कमरे में भक्तों पर दृष्टि डाली तो वहां केवल 6 भक्त मौजूद थे। एक रात पहले मंदिर भीड़ से भरा था और लोग कहां है, प्रभुपाद ने पूछा, और लोग कहां है? और तब उन्होंने स्वयं उत्तर दिया, वे सो रहे हैं, इतना अधिक सोना ठीक नहीं। उन्होंने अपने करताल निकाले और वे 1, 2, 3 की लय में बजाने लगे। मुकुंद ने मृदंग उठाया और वह उनके साथ बजाते हुए इससे हाल में प्रभुपाद द्वारा सिखाई गई लय निकालने का प्रयत्न करने लगा। प्रभुपाद ने गाना शुरू भी नहीं किया था कि दरवाजा खुला और आधे दर्जन हिप्पी नंगे पांव कमरे में ढुलकते हुए घुसे। उनसे मारीजुआना की बू आ रही थी। चारों ओर देखकर वे फर्श पर भक्तों के साथ बैठ गए। इस बीच प्रभुपाद गुरु महाराज के प्रति वैष्णव प्रार्थना गुरु अष्टकम गाने लगे थे। यद्यपि उनके शिष्यों में से कोई भी प्रार्थना के शब्द नहीं समझता था, फिर भी उन्हें इन प्रांतकालीन प्रार्थना गीतों को स्वामी जी से सुनना प्रिय लगता था। शीघ्रता किए बिना वे हर श्लोक को गाते थे और उसकी हर पंक्ति को कई बार दोहराते थे। इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु के प्रति विशुद्ध सेवा को प्रवृत्ति का वे निश्चय पूर्वक विकास करते थे। तब एक हिप्पी लड़का जिसके लंबे सीधे सुंदर बाल थे और जो सिर में लाल फीता बांधे था बड़बड़ाने और सिसकने लगा। किसी ने धीरे से उसे शांत रहने का कहा। लड़का रुक गया लेकिन फिर सिसकने लगा। स्वामी जी और उनके अनुयायी इस बात के अभ्यस्त थे कि नशीली दवाएं खाए हुए हिप्पी रात भर बाहर रहते हैं और सवेरे के कार्यक्रम में मंदिर पहुंचते थे जिसमें कभी कभी कार्यक्रम में विघ्न पड़ता था। आम तौर पर ये दर्शक विनयशील होते थे और यदि कभी कभी वे विचित्र मनोदशा में होने से बोध भी पढ़ते थे तो हरे कृष्ण अपने और भक्तों की शक्ति धारा में बहने के प्रयत्न में उन्हें प्रायः शांति मिलती थी। किंतु आज का अनमेल दर्शक कीर्तन से आंदोलित मालूम होता था, मानो यह कीर्तन उसे चुनौती दे रहा हो। प्रत्युत ऐसा लगता था मानो वह दर्शक उसे चुनौती दे रहा हो। भक्तों ने प्रभुपाद के करतालों के साथ ताली बजाना आरंभ किया और जब प्रभुपाद हरे कृष्ण गाने लगे तो उनके आधे दर्जन अनुयायियों ने सामूहिक गाना और एक दोनों गाकर तुरंत उनका साथ दिया। प्रभुपाद ने उनकी ओर गंभीर मुद्रा से देखा। वे बिस्तर से उठकर भागे आए हुए अपने उन छोकरों को प्रोत्साहित कर रहे थे। वे छोकरे जीने से उनका अनुगमन कर रहे थे। अतिथि नशीली दवा के प्रभाव से ध्यान मग्न बैठे थे। यद्यपि उनमें से एक या दो अलग से गाने का प्रयत्न कर रहे थे लेकिन वह गोरा सुंदर लड़का जो सिर में लाल फीता बांधे था, असमन्वित सा जमकर बैठा रहा, वह अवज्ञापूर्वक सिसकिया भरता रहा, मानो वह कीर्तन के प्रभाव को उतार फेंकने का प्रयत्न कर रहा हो। इतने पर भी लड़के के सिसकने के बावजूद जो कभी कभी जोर पकड़ लेता था और भयानक हो जाता था, प्रभुपाद गाते रहे और भक्त हरे कृष्ण के कीर्तन में लगे रहे। मुकुंद और हरिग्रीव ने एक दूसरे को चिंतातुर दृष्टि से देखा, लेकिन वे उस लड़के का व्यवहार सहन करते रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। कुछ भक्तों को विघ्न मालूम हो रहा था और वे डर भी गए थे, लेकिन उन्होंने स्वामी जी के हाल के व्याख्यानों में सुना था कि पारंगत भक्त किन्हीं भी परिस्थितियों में शुद्ध नहीं होते। स्वामी जी उनके नेता थे, केवल भक्ति में ही नहीं वरना इस बात में भी कि इस हस्तक्षेपकर्ता से कैसे आए, इसलिए उनसे संकेत पाने की प्रतीक्षा में वे उनकी ओर देखते रहे। प्रभुपाद शांत बने रहे, किंतु यद्यपि 20 मिनट के बाद कीर्तन तेजी पर पहुंच गया, फिर भी उस सुंदर गोरे लड़के का पागलपन नहीं गया। कीर्तन की गति ज्यों-ज्यों उत्कर्ष की ओर होती गई, वह और अधिक आंदोलित होता गया। वह एक खोई हुई आत्मा की तरह चिल्लाने लगा और एक राग गायक की भांति अलापता हुआ उत्तरोत्तर अधिक अशांत और क्रुद्ध होता जा रहा था। जब भक्त खड़े हुए और नृत्य करने लगे तो वह लड़का भी नाचने लगा, लेकिन अपने ही ढंग से चिल्लाते हुए और अपनी छाती पीटते हुए मुकुंद ढोल और जोर से बजाने लगा। ध्वनियां आपस में अनमेल थी, उनमें व्यक्तिगत पागलपन और सामूहिक कीर्तन का संघर्ष था। अंत में प्रभुपाद ने कीर्तन बंद कर दिया। भक्तों ने फर्श पर सिर झुकाया और श्री प्रभुपाद ने संस्कृत में आध्यात्मिक गुरुओं परंपरा और पवित्र स्थानों की प्रशस्ति का गान किया। सभी एकत्रित भक्तों की जय हो, उन्होंने कहा। भक्तों का उत्तर था हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय हो हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय हो हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद, प्रभुपाद बोले। और जैसा कि उनका सवेरे का नियम था, उन्होंने कहा एक बार कीर्तन और हो। संघ की हिप्पी सहित सभी बैठ गए। भक्तों ने अपने करताल और ढोलक अलग रख दिए और लाल रंग की बड़ी मालाएं हाथ में ले ली और एक साथ जप करने लगे। हरे कृष्णा हरे राम। एक बार में एक मनके पर अंगुलियां रखकर वे मंत्र बोलते थे और तब दूसरे मनके पर अंगुलियां ले जाते थे। घटनाओं के इस तरह मोड़ लेने पर चकित होकर सुंदर गोरे लड़के ने जोर से टिप्पणी की, फार आउट। तीव्र गति से होने वाले जप की ध्वनियों से जब कमरा भर गया, तब लड़का उछल कर खड़ा हो गया और चिल्लाया, मेरे साथ आओ। चारों ओर चक्कर लगाकर वह प्रभुपाद के सामने गया और चिल्लाया, मैं ईश्वर हूं। तब वह जोर से चीखने चिल्लाने लगा, वो आहू वाहू आह उह। वह सिसकने लगा, बड़बड़ाने लगा और पांव पटकने लगा। एक छोटे बच्चे की तरह वह जितनी प्रकार की ध्वनियां पैदा कर सकता था उतनी ध्वनियां उसने पैदा की। मुट्ठी से अपनी छाती बार बार पीटते हुए वह चिल्लाया, मैं ईश्वर हूँ। और लड़के के एक मित्र ने अचानक पैन पाइप से एक धुन पैदा की, किंतु श्रील प्रभुपाद जप करते रहे और भक्त मंडली भी निकर होकर जप में लगी रही, किंतु इसके साथ साथ सबकी दृष्टि उस सन की लड़के पर थी। कोई नहीं जानता था कि इसका अंत कहां होगा। अंत में लड़का जोर से चीखा, मैं ईश्वर हूं, और क्रोध और घृणा से भर कर वह कमरे के बाहर चला गया। अपने पीछे दरवाजा बंद करके वह चिल्लाता हुआ सड़क पर भाग निकला। समुचित शांत भाव में चलते हुए जब से स्टोर फंड भर गया और श्री प्रभुपाद की आवाज अन्य भक्तों की आवाज के ऊपर और स्पष्ट से सुनाई देने लगी। करीब 10 मिनट के जप के बाद प्रभुपाद ने गाया, सर्वात्म सपनम सपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण के सामूहिक कीर्तन की जय हो, जो मन के दर्पण की मैल साफ करता है और इस अमृत की प्राप्ति करता है, जिसके लिए हम सब सदा प्यासे रहते हैं। तो प्रभुपाद ने अपना चश्मा धारण किया और भगवत गीता खोली। वे हर दिन प्रातःकाल छठे अध्याय पर बोलते थे और कमरे के सब लोग उनका व्याख्यान सुनने के लिए शांत होकर बैठ गए। उनके अनुयायी जिनमें से कुछ उनके उपदेशों को 2 मास से अधिक समय से आत्मसात कर रहे थे, उनके द्वारा प्रतिपादित शाश्वत परंपरा संदेश को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। यह कृष्ण का कालातीत संदेश था, फिर भी स्वामी जी अपने शिष्यों के लिए ही उसे प्रस्तुत कर रहे थे। जब वे हैड एशबरी के 518 फ्रेडरिक स्ट्रीट में छोटे से स्टैंड फ्रंट में बड़े सवेरे गलीचे पर बैठे थे, प्रभुपाद ने आत्मा के आवागमन की व्याख्या की। उन्होंने कहा, मूर्ख जन संसारिक उपलब्धियों के लिए प्रयत्न करते हैं, वे नहीं जानते कि शरीर के मृत होने के साथ ये चीजें समाप्त हो जाती हैं, किंतु आध्यात्मिक जीवन का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए यदि कृष्ण चेतना अनुविधाजनक या कष्टदायक भी हो, तो भी इसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। श्री प्रभुपाद पुनः इस बात पर बल दे रहे थे कि भक्त कभी शुद्ध नहीं होता। आज सवेरे कीर्तन में जो व्यवधान पैदा हुआ था, उसके संदर्भ में यह बात विशेष रूप से कथनी थी। प्रभुपाद ने कहा, भक्त सदैव सहिष्णु होता है। प्रभुपाद ने महान भक्त हरिदास ठाकुर के संबंध में एक कहानी सुनाई, जो भगवान चैतन्य के समकालीन थे। एक मुसलमान न्यायाधीश के हाथों उन्हें तीव्र मार खानी पड़ी। कहानी सुनाते समय प्रभुपाद ने संवाद का कल्पित रूप इस प्रकार रखा, ओह, मजिस्ट्रेट ने हरिदास से कहा, तुम ऐसे अच्छे कुल में पैदा हुए हो और तुम हरे कृष्ण गा रहे हो। तब प्रभुपाद ने हरिदास की बात कही, महोदय, बहुत से हिंदू भी मुसलमान हो गए हैं, तो यदि कोई मुसलमान हिंदू बन जाता है तो हानि क्या है। प्रभुपाद ने संवाद के भिन्न भिन्न भागों को सुनाते हुए अपनी आवाज ऊंची नीची नहीं की, किंतु एक कुशल कहानी सुनाने वाले की कला का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी आवाज से भिन्न भिन्न पात्र की आवाज प्रस्तुत कर दी। न्यायाधीश ने धमकाते हुए कहा, ओह, तुम बहस कर रहे हो। प्रभुपाद कथावाचक की भांति बोलने लगे। वह निर्णय यह हुआ कि हरिदास को किसी बहाने से सजा मिलनी ही है। जैसे किसी कुत्तों को कोई बुरा नाम दे दो और उसे फांसी पर चढ़ा दो, तब प्रभुपाद हरिदास को कोड़े लगाने वाले बन गए। वे कोड़े लगा लगा कर थक गए, पर पीड़ा से हरिदास को रुला नहीं सके। अंत में थक कर वे बोले, महोदय ख्याल यह था कि आप मर जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि आप मर नहीं रहे हैं, इसलिए अब सजा हमें मिलेगी। हरिदास तुम क्या चाहते हो? कोड़े लगाने वाले, हम चाहते हैं कि आप मर जाओ, कथावाचक वर्णन करता। तब उन्होंने समाधि लगा ली और कोड़े लगाने वाले उन्हें मजिस्ट्रेट के पास ले गए। मजिस्ट्रेट बोलने लगे, इसे पानी में फेंक दो, कब्र में मत दफनाओ, वह हिंदू हो गया है। श्री प्रभुपाद ने अपनी कहानी का अंत किया। दूसरे लोग उन्हें कोड़े लगा रहे थे और वे जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वे अशुद्ध और स्थिर थे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन व्यक्तियों के लिए जो आध्यात्मिक दृष्टि से पारंगत हो गए हैं, इस संसार में भी दुख नहीं है, परलोक का तो कहना ही क्या। भक्त हानि में नहीं रहता। प्रभुपाद ने समझाया, यदि वह पूर्णतः कृष्ण चेतना नहीं भी होता या यदि वह भटक भी जाता है, तो भी अगले जन्म में वह मनुष्य बनेगा। एक राजकुमार था। प्रभुपाद ने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए और एक कहानी शुरू की। इसका नाम सत्यवान था। उसे एक निश्चित आयु का होकर मरना था। उसके जन्म पत्र में ऐसा लिखा था, लेकिन सावित्री नाम की एक लड़की उसे प्यार करने लगी थी। अब वह उससे ब्याह करना चाहती थी। उसके पिता ने बताया कि लड़का कुछ वर्ष का होकर मर जाएगा, उससे ब्याह मत करो। लेकिन लड़की पड़ी रही, उसने उससे ही ब्याह कर दिया। 4-5 साल बाद लड़का मर गया और लड़की विधवा हो गई। किंतु वह इतनी निष्ठावान प्रेमिका थी कि उसने पति के शव को नहीं ले जाने दिया। और यमराज अंग्रेजी में उन्हें क्या कहते हैं, जो मृत्यु के बाद शव को या जीव को ले जाते हैं? वह जीव को ले जाने के लिए आए, परंतु वह पतिव्रता लड़की अपने पति के मृत शरीर को ले जाने नहीं देती थी। प्रभुपाद अपनी आवाज से और विस्फारित नेत्रों से ऐसे लग रहे थे मानो वे यमराज जो विधवा सावित्री से बोल रहा हो, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं शव को ले जाऊं, तुम उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें भी दंड मिलेगा। लड़की ने अपने पति को छोड़ दिया, लेकिन वह यमराज के पीछे चलने लगी। तब अपनी आवाज कुछ धीमी करके प्रभुपाद ने दयालु यमराज का रूप बनाया। मेरी प्रिय बच्ची, घर जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें एक लड़का होगा, अपने पति के लिए विलाप मत करो। लेकिन सावित्री यमराज के पीछे चलती ही रही। यमराज ने कहा, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तब प्रभुपाद सावित्री के रूप में बोले, स्त्री की आवाज में नहीं बोले, वरना सावित्री के तर्क और मर्म के साथ बोले, आप मेरे पति को लिए जा रहे हैं, मैं पुत्र कैसे प्राप्त करूंगी? उसको पकड़ लिया। उपयुक्त होगा इस पड़ोस में यदि कोई, कैसे प्राप्त करूंगी? प्रभुपाद कहानी वाचक के रूप में बोले, वो तब यमराज धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने सावित्री का पति लौटा दिया। इस प्रकार एक विधि है यदि आप कृष्ण भावनामृत की शरण अपना लेते हैं तो आपका पति या जीवन का यह मानव रूप निश्चित हो जाता है। भक्त कहानी का सारांश समझ गए, लेकिन उनके लिए यह अच्छी तरह स्पष्ट नहीं हुआ कि उनके जीवन का कहानी की स्त्री से क्या संबंध है। लेकिन कुछ की समझ में आ गया कि यदि वे कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर लेते हैं तो अधःपतन की ओर बढ़ता हुआ उनका जीवन भी सौभाग्यशाली बन सकता है। हाँ, प्रभुपाद ने कहना जारी रखा, आध्यात्मिक जीवन सबसे सौभाग्यशाली जीवन होता है। सामने फर्श पर बैठे हुए भक्तों पर उन्होंने गहरी दृष्टि डाली। जिस किसी ने कोई अच्छा या शुभ काम किया है वह कभी परास्त नहीं होता। इस व्यक्ति को कभी कोई कठिनाई नहीं होगी, यह इतना अच्छा काम है। उन्होंने अपना व्याख्यान समाप्त किया और प्रश्न पूछने को कहा। एक युवती ने अपना हाथ उठाया। आप कहते हैं कि मूर्ख लोग किसी ऐसे व्यक्ति के चित्र की पूजा करते हैं जो मृत हो चुका है। आपने जॉर्ज वाशिंगटन या गांधी का उदाहरण दिया, किंतु क्या किसी आध्यात्मिक गुरु का चित्र प्रेम करना सिखाने में और की मदद नहीं करता? प्रभुपाद, हाँ, जो आध्यात्मिक उन्नति कर चुके हैं वे अपने चित्र से अलग नहीं है। जैसे यहाँ कृष्ण की मूर्ति है, यह कृष्ण से अलग नहीं है। मूल पुरुष कृष्ण और कृष्ण की यह मूर्ति दोनों एक ही है। जैसे हम हरे कृष्ण का गान कर रहे हैं, कृष्ण और कृष्ण नाम अभिन्न है। क्या आप उसे अनुभव करते हैं? यदि हम हरे कृष्ण का जप करके कुछ आध्यात्मिक आलोक नहीं प्राप्त करते तो क्या आप समझते हैं कि हम अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं? नहीं, हम अपना समय नहीं गवा रहे हैं। हम सचमुच आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है। किसी तरह आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण पुरुष और उनका चित्र एक है, क्योंकि यह निरपेक्ष अवस्था है। क्या बात स्पष्ट हुई? गोविंद दासी ने अपना हाथ उठाया। आपने कहा कि कृष्ण भावनामृत प्राप्त व्यक्ति यह शरीर छोड़ने के बाद उच्च लोक को जाता है। प्रभुपाद, नहीं, यदि तुमने कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त कर ली है तो यह शरीर त्यागने के बाद तुम सीधे कृष्ण के पास जाओगी। किंतु यदि तुम पूर्ण नहीं हो, यदि तुमने केवल कुछ प्रतिशत की प्राप्ति की तो उन्हें दूसरे मानव शरीर का अवसर मिलेगा। किंतु जिसने समझ लिया कि कृष्ण क्या है, कृष्ण अवतरित कैसे होते हैं, कृष्ण लीला कैसे करते हैं, वह फिर मृत्यु लोक में नहीं पैदा होते। तब वह कहां जाते हैं? क्या देहम पुनर्जन्म नहीं मामेति सौरजुन, वह मेरे पास आता है। उसका तात्पर्य यह है कि वह कृष्ण के धाम में जाता है। इसलिए हमें बहुत गंभीर रहना चाहिए। हम पुनर्जन्म के लिए अपेक्षा क्यों करें किसी पवित्र कुल में, धनाढ्य कुल में या अन्य लोक में? यह मानव शरीर तुम्हें कर्म सिद्धि दे सकता है, लेकिन हमें धन लगाकर उस सिद्धि के लिए प्रयत्न करना होगा। हम ध्यान नहीं लगाते, हम बहुत गंभीर नहीं है। सचमुच मानव सभ्यता का अर्थ यह है कि लोग मानव शरीर से पूर्णता प्राप्त करने में पूरा ध्यान लगाए, वही पूर्ण मानव सभ्यता है। वर्तमान युग में इसका अभाव है। श्री प्रभुपाद कई मिनट तक बिना हिले डुले मौन बैठे रहे। सभा में से किसी ने कोई जवाब नहीं की। अंत में उन्होंने अपने पर्ताल उठा लिया और दोनों को जोर से बजाते हुए गाने लगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंद।
अधिकारी